ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रूपये का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से काम करेगी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री तमांग ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ओडिशा में पहली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। भाजपा ने विधानसभा में विधायकों के नेता के चुनाव की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 उत्तराखंड में और 1-1 बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान अगले महीने की 10 तारीख को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। केंद्रीय मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उनकी बातचीत भारत मॉरिशस के विशेष संबंध को दर्शाती है। डॉ जयशंकर ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बढ़ते भारत नेपाल सहयोग के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आज दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजू से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो भारत और मालदीव के बीच मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले में हुए आतंकवादी हमले को क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए अनुचित प्रयास करार दिया है। इस हमले में 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 33 घायल हुए थे। अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि ऐसे प्रयासों से सख्ती से निपटा जाएगा और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में जांच अभियान चलाया जा रहा है। उपराज्यपाल ने मृतकों के निकट परिजन को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। इस बीच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का एक दल आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहुंच गया है। ये दल आतंकी हमले की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर रहा है। सुरक्षा बलों ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। बेंगलुरू की एक अदालत ने आज यौन उत्पीड़न मामले में निलंबित जनता दल एस नेता प्रज्वल रेवन्ना को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने के बाद अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश ने आदेश जारी किया। प्रज्वल को 30 मई को बेंगलुरू हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। मौसम विभाग ने गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इसे देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों के मौसम में भी बदलाव दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश के साथ बिजली और तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।